जब भगवान कृष्णा वनमाला पहनकर जंगल में घूमते हैं तो ऐसे एक नहीं हजारों भंवरे उनके फूलों के आसपास गुंजन करते रहते हैं, तो भगवान को डिस्टर्ब नहीं होता है, तो हमको भी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। निश्चित रूप में भगवान की असीम कृपा है, इसलिए उस सुंदर रमणीक स्थान पे आप बैठे हुए हो। कोटि कोटि रुपए भी आप खर्च करेंगे रेंट के रूप में तो भी ऐसा वातावरण निर्माण नहीं कर सकते आप। पीछे नदी, गाय, सामने आम के वृक्ष, सुंदर वातावरण। क्योंकि अगर अभी एक मिनट में वर्षा होगी सब लोग भाग जाएंगे, वर्षा भी नहीं हो रही है। आप लोगों को बैठने का सुंदर मौका मिला है, आप लोग कुछ समय के लिए भगवान का नाम पुकार सके हृदय से, इतना बड़ा भाग्य है। क्योंकि ऐसा वातावरण, ऐसा भक्तों का संग, ऐसा पवित्र क्षेत्र, नदी का संग और सात्विक वातावरण, इसमें कोई रजोगुण नहीं है, पैशन नहीं है, शांत वातावरण जिसमें हमारी आत्मा भी शांत हो सकती है। जो जीवन की बहुत ही रजोगुणी गतिविधि है ना, बहुत पैशनेट रट, यहाँ पर शांत हो जाती है। और जब कोई जल शांत होता है उसी में जहाज आगे बढ़ सकता है। अगर जल में कोई बहुत उथल पुथल है तो जहाज आगे प्रगति नहीं कर सकता है, वो वहीं पर उथल पुथल होते रहेगा उसका। वैसे मन के सागर, मन के तालाब में जब पानी शांत होता है तो उसमें आध्यात्मिकता बढ़ सकती है। इसलिए हम धाम में आते हैं, क्योंकि हम धाम में आकर उस अनुकूल वातावरण को खोजने का प्रयास करते हैं कि कहाँ वो वातावरण मिलेगा जिसमें हमारी आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो एकदम जागृत हो सके, प्रकट हो सके, विकास हो सके उसका। इसलिए ऐसे वातावरण में जब आते हैं तो ऐसे हमको अमेरिका में मिल सकता है, इंग्लैंड में मिल सकता है, इससे बढ़िया मिल सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिकता इसमें है वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। इससे भी स्वच्छ गार्डन मिलेंगे, इससे भी स्वच्छ पेड़ ऐसे प्लान से बनाए हुए इतने सुंदर तरीके से मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी वो आपको खोखला लगेगा क्योंकि उसके अंदर भगवान का अधिष्ठान नहीं है। देर इज़ नो फाउंडेशन ऑफ गॉड, देर इज़ नो फाउंडेशन ऑफ श्री कृष्णा मर्सी देर। ये जगह कैसी है, ये बड़ी अद्भुत जगह है जहाँ पर आप बैठे हो। इस सारे क्षेत्र को आम्रघाट कहते हैं, पीछे गंगा जी का प्रवाह है। हाँ, हम हर साल यात्रा में आते थे, यहीं बैठ के कथा करते हैं, बहुत दिव्य जगह है ये। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सब जगह कीर्तन करते थे, आप जानते हैं उनका कीर्तन बड़ा अद्भुत और दिव्य हुआ करता था। उस कीर्तन में सब लोग प्रेम से आनंद से विभोर हुआ करते थे, दे जस्ट गेट कंप्लीटली इन एक्सटेसी ऑफ लव फॉर गॉड। तो ऐसे ही उन्होंने एक बार, जैसे भगवान ने रास रचाया पहली बार बंसीवट पे, फिर ब्रज के कोने कोने में रास रचाया, तो ब्रज की हर एक कोना कोना जो है वो रास स्थली है। वैसे ही उन्होंने शुरुआत किया रास यानी हरिनाम संकीर्तन श्रीवास ठाकुर के घर पे, लेकिन उसके बाद में पूरे नवद्वीप में कोने कोने में कण कण में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया। तो नवद्वीप की हर एक भूमि, हर एक स्क्वायर इंच जगह जो है वो हरिनाम संकीर्तन से आनंद से भरी हुई है। तो इस जगह पर उन्होंने एक बार भक्तों के साथ में बहुत दिव्य कीर्तन किया। और हमारे संप्रदाय की विधि क्या है? चैंट, डांस एंड फीस्ट, ये हमारा फिलॉसफी है, सिंपल। भगवान के नाम का कीर्तन करो, नृत्य करो, और थक गए प्रसाद लो, प्रसाद लो, फिर उठो, फिर कीर्तन करो, फिर नृत्य करो। देयर विल बी नो मिजरी, चैतन्य महाप्रभु इज़ गारंटीड, कोई दुख नहीं होगा आपके जीवन में, आप केवल भगवान के नाम के कीर्तन में आनंद लेते रहो बस। जब भी होता है तो अपना दिल लगाकर उसमें भाग ले लो। तो ऐसे ही धूमधाम से कीर्तन हुआ इस वन में, और सब भक्त लोग बहुत घंटे नाचे, 10-15 मिनट और 20 मिनट नहीं, बहुत घंटे नाचने के बाद थक गए सब भक्त लोग, और नेचुरली उनको भूख भी लग गई। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु जी भूख लग रही है, अभी जंगल में क्या खाएं? तो महाप्रभु जी ने एक आम की गुठली ली और उसको जमीन पर गाड़ा, थोड़ा सा जल दिया। जैसे ही उन्होंने आम की गुठली जमीन पर रखी, जल दिया, कुछ ही क्षणों में एक भव्य पेड़ तैयार हो गया उसमें से। हमारे पेड़ को कितना घंटा लगता है, कितना दिन लगते हैं? 5, 7, 10, 12 भी हो सकते हैं। हमारे भी हॉस्पिटल में हमने एक फनस का झाड़ लगाया है, अभी 5-6 साल हो गया, अभी भी उसका फल जो है वो मैच्योर नहीं है। इस साल भी फल आया तो भी उसको फेंक देना पड़ा, अंदर कुछ है ही नहीं उसके। कितना समय लगता है, एक बार फिर देने लगेंगे, फिर देखेंगे ना कैसे मायापुर में एक एक फनस के झाड़ के ऊपर 50-50, 60-60 फनस लगे हुए हैं। अरे खाने को भी कोई नहीं है, ले जाओ बोलते हैं। क्या करें उसका, ऐसे ही सड़के गिर जाते हैं। और ऐसे अनंत पेड़ हैं आम के। तो वो जो पेड़ था वो महाप्रभु की कृपा से कुछ ही क्षणों में पूर्ण विकसित हो गया और उसमें हजारों लाखों फल लगे आम के। और कैसे लगे? हर एक आम के फल के अंदर कोई गुठली नहीं थी और कोई छिलका भी नहीं था, रेडीमेड पल्प। हाँ, खाली खाना है बस आपको, कुछ छिलका निकालने की जरूरत नहीं, कुछ बाटा निकालने की जरूरत नहीं है। और एक फल इतना बड़ा कि एक व्यक्ति एक खाएगा पैक हो जाएगा। सब भक्त लोग आए, महाप्रभु ने तोड़ तोड़ के सबको फल दिए, सब लोग ने खाए, एक एक फल खा के संतुष्ट होने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक साल भर फल देता रहा, एक साल भर भक्तों ने उस पेड़ से अनंत फल खाए। कीर्तन करना, नाचना, भूख लग गई तो एक फल खाना, फिर कई घंटे कीर्तन करना, फिर एक फल खाना, इस तरह से एक साल तक उस पेड़ ने अनंत ऐसे मधुर स्वाद वाले बड़े बड़े मोटे मोटे बिना गुठली वाले बिना छिलके वाले आम के फल दिए। और एक साल के बाद में गौरांग महाप्रभु की दिव्य इच्छा के अनुसार वो पेड़ लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। उसी के स्मृति में यहाँ पर सारे आम के पेड़ लगे हुए, देखो आप आगे जाकर कुछ किलोमीटर तक आम ही आम के पेड़ हैं, इस रास्ते के उस तरफ भी आम के पेड़ हैं, ऐसे ही भव्य दिव्य पेड़ हैं आम के। लेकिन अभी गुठली है और छिलका भी है, हम केवल अभी स्मृति में उस लीला को याद करते हैं कि कैसे महाप्रभु की लीला है। महाप्रभु जी क्या नहीं कर सकते हैं? नित्यानंद प्रभु ने एक बार कीर्तन किया, मैंने बताया ना कल आपको, 3 महीने बच्चों ने कीर्तन किया, 3 महीने। ये अद्भुत लीला है, ये किसी भी अवतार में नहीं हुई है भगवान की लीला। जो नरसिंह भगवान ने लीला किया, जो मत्स्य अवतार ने किया, जो वराह अवतार ने किया, जो कृष्ण भगवान ने स्वयं किया, जो बलराम जी ने किया, जो प्रभु रामचंद्र ने किया, बहुत अद्भुत लीला किया, उसमें सबसे सर्वोत्तम श्री कृष्ण भगवान है, वैसे लीला को किसी ने भी नहीं की, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। प्रभु रामचंद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की, आइडियल बिहेवियर, आदर्श पिताजी, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श मनुष्य, ये लीला की। नरसिंह भगवान ने कुछ समय की लीला की, आए कुछ समय फाड़ दिया चले गए, ज्यादा समय नहीं था उनके पास, थोड़े समय की लीला थी। कृष्ण भगवान 125 साल तक जिए, राम भगवान कुछ लक्ष साल तक जिए, अलग अलग लीला किया उन्होंने, वनवास किया, राज दरबार का लीला किया। लेकिन गौरांग महाप्रभु लीला कैसा है? एकदम अद्भुत लीला है। जैसे अभी ये पेड़ में पेड़ पैदा किया उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने 3 महीने कीर्तन करवाया बच्चों से। ऐसे कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जब आते थे ऐसे और ऐसे चल रहे हैं, और आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे, और वो वहाँ से आते हैं और वो एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं और सबको देखते हैं ऐसे, बस जैसे ही देखते जाते हैं, जिनको जिनको देखा हुआ है वो सब प्रेम आश्रुओं से ओतप्रोत होकर भाव में मग्न होकर लोटपोट हो जाते थे, रोने लगते थे कीर्तन में। जैसे भगवान ने कैसे किया, दुखी कम हियर, फ्रॉम टुडे यू आर सुखी। तो अचानक उसके हृदय में दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया एकदम फव्वारे की तरह, और वो कृष्ण प्रेम से विवल होकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ हुआ नहीं, खाली बोला भगवान ने, एक शब्द वाणी उच्चारण किया बस। वैसे ही नित्यानंद प्रभु का दृष्टिपात केवल काफी है, ऐसे किसी भी अवतार में कहीं भी नहीं हुआ है। अरे वो नित्यानंद प्रभु जो कैसे थे, वो हल मुसल और गदा धारण करते थे, वो रोम हर्षण सूत ने भरी सभा में बैठे रहे, उठकर खड़े होकर सम्मान नहीं किया, तो एक तिरण का पत्ता उठाया और गले को लगाया, बस फिनिश्ड हो गए रोम हर्षण सूत। दिनों का सुर को ऐसे पेड़ से उठाकर उठा उठाकर पटक पटक के मारा, पर लंबा सुर को सर के उठा पर मुक्का मार के खत्म कर दिया। हाँ ऐसे पृथ्वी को, पृथ्वी से हस्तिनापुर को उखाड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उनका अपमान किया दुर्योधन ने। उनके कृष्ण भाई थे, उनके उनके जाम्बुवती का पुत्र सांब था, और सांब को लक्ष्मणा अच्छी लगी, दुर्योधन की कन्या, तो वो उसको हरण करके ले गया स्वयंवर से। तो सभी महारथी ने उसको घेरा और बंदी बना दिया, एक महारथी के साथ लड़ना चाहिए, तो सारे कुरुवंश के महारथी एक साथ टूट पड़े उसके ऊपर और पकड़ लिया उसको, अरेस्ट कर लिया और अलग कर दिया उनको। तो बलराम जी गए, चलो कोई बात नहीं, सब सब यदुवंशी जो है वो महायुद्ध करने को तैयार थे कुरुवंशियों के साथ। बलराम ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं जाता हूँ, जरा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, युद्ध क्यों करना है, अपने रिश्तेदार है वो, थोड़े उद्दंडता करते होंगे, मैं समझा दूंगा उनको और सांबा को ले आऊँगा। गए और ऊपर से विनती किया उन्होंने, सांबा को लक्ष्मणा को लौटा दो, विवाह तो हो चुका है, उसने हरण किया तो पत्नी हो गई उसकी वो। दुर्योधन ने बहुत निंदा किया उनका, बोलते आप पैर की जूती को सर में बैठने का साहस नहीं करना चाहिए, ऐसे बलराम को बोल रहे हैं, सोच रहे हैं आप, पैर की जूती को मुकुट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप यदुवंशियों को राजदंड जो है हमने कुरुवंशियों ने दिया है, इसलिए आप राज्य प्राप्त करके राजा वगैरह बने हो, सब हमारी कृपा है, और अभी आप हमारी लड़की को अपनी पत्नी मानने का मत सोचो, मतलब जूता को सर पे रखने का मत प्रयास करो, ऐसे उन्होंने उनका निर्बल सुना किया। तो अभी तक शांत थे बलराम जी की आंखें लाल लाल हो गई कोयले की तरह, उन्होंने हल्का आह्वान किया, हल्का आह्वान करके पृथ्वी पर ऐसा दे मारा कि पूरा हस्तिनापुर को पृथ्वी से उखाड़ लिया उन्होंने, हल्के कोने पर आकाश में लेके गए उसको, और हवा की गति से अपने हल्के कोने पर उठाए हुए हस्तिनापुर को पूरी हस्तिनापुर की कुरुवंशी जनता के साथ, स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, योद्धाओं के साथ, महारथियों के साथ में लेकर गंगा जी में डुबाने ले गए हवा की गति में साथ। कुछ ही क्षणों में वो पूरा हस्तिनापुर गंगा में डूब जाता। वो बलराम जी का वो आवेश देखकर वो जो कोना था ना, कोना हल्का जिस पर उठाया हुआ था, वो कोने के पास सब लोग कुरुवंशी भाग के आए, त्राही माम, सबसे पहले कौन, लक्ष्मणा, उसके बाद में कौन, सांब, उसके बाद में कौन, दुर्योधन, उसके बाद में फिर भीष्म पितामह और सारे पांडव, सब लोग रोते हुए आ रहे हैं, बचाओ बचाओ। तब जाकर उन्होंने वो नोक पर खड़ा किया हुआ हस्तिनापुर को वापस पृथ्वी पर रख दिया, और फिर बड़े इत्मीनान से सांब को लेकर, लक्ष्मणा को नव परिणित वधु को लेकर वो द्वारका चले गए। ऐसे थे बलराम। लेकिन वही बलराम जब नित्यानंद बनकर आते हैं ना, तो क्या होता है, अति दयालु बन जाते हैं, एकदम विपरीत। जिनके क्रोध से केवल एक क्षण में किसी की मृत्यु हो जाती थी, ऐसे बलराम जी को शराबी लोगों ने शराब का मटका दे मारा। उनको कहने गए थे वो, अरे चैंट हरे कृष्णा प्लीज, भगवान का नाम लो, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। महाप्रभु के आदेश पर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जा रहे हैं सब जगह पर, तो देखते हैं कि दो शराबी, हाँ, ब्राह्मण कुल के अच्छे उच्च कुलस्थ, लेकिन इतना पाप कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, बाजार में इतना हाहाकार मचा दिया उन्होंने, सब दुकान बंद हो रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी घर में आग लगा रहे हैं, किसी का अपराध कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के मन में ऐसा अद्भुत विचार आया कि इनको भक्त बनाना चाहिए। ये भक्त बनेंगे तो गौराग महाप्रभु का जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, वो सफल हो जाएगा। इनको देखकर सब लोग भक्त बन जाएंगे, अगर ये भक्त बनेंगे तो। सर, इस प्रोजेक्ट जगाए मधाई, मिशन जगाए मधाई। अब ये बहुत भयंकर कल्पना थी। हाँ, कल्पना करना अच्छा होता है, लेकिन उसको असल में उतारना बहुत मुश्किल होता है। ठाकुर हरदास ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, इनको इनको छोड़ो, ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, इनको छोड़ो, बहुत बाकी लोग बड़े, उनको प्रचार करो। अपने नोक पर हस्तिनापुर को उठाने वाले जो बलराम जी हैं, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में घर घर में जाकर दस्तखत दे रहे हैं। और लोग दरवाजा खोलते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, कृपा करके हरे कृष्णा नाम ले लो, भगवान का नाम लो, भगवान की शिक्षा करो, भगवान की ही सेवा करो, जीवन को धन्य करो, वही हमारे सर्वस्व हैं। तो कुछ लोग उनके मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, तो उनको मुमकिन था कि भाई हल उठा लिया और घर को ही उखाड़ के नदी में फेंक दिया, सब मुमकिन था। लेकिन वो क्या करते थे, दोबारा दरवाजा ठोकते थे, प्लीज ओपन द डोर। और उस समय दरवाजा खोलते थे तो लोगों को बोले, कौन है, कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कहाँ है, जमीन पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुंह पर दरवाजा बंद किया है, उनके लिए जमीन पर लेट कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 10 बार 50 बार हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर सकते हो, लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम लो, वी डोंट माइंड दिस इंसल्ट। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु दयालु बन जाते हैं, सबसे बल के स्रोत है वो, बलराम है वो, बलदेव। सारा बल जो आध्यात्मिक और शक्तिशाली जो बल, आध्यात्मिक भौतिक बल है, उसके स्रोत है वो, उगम है उसके। वो क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़कर हमारे तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, यही जीवन का उद्देश्य है, जीवन व्यर्थ गवा मत करो, यही जीवन का उद्देश्य है, इसी के लिए जीवन दिया गया है। तो वो पहुंचे जगाई मधाई के पास, बोले प्लीज चैंट हरे कृष्णा, ओ जगाई ओ मधाई, हरि नाम लो। तो उनका इतना गुस्सा आया, अरे हमें बताने की हिम्मत इनको हो रही है, हमारे सामने, हम जब आते हैं रास्ते पर तो लोग दूर भागते हैं हमारे से, और ये दूर से हमारे साथ में आकर, हमारे सामने आकर बोल रहा है, इतनी हिम्मत इसकी। तो उसने प्याला उठाया तो ये दोनों भाग गए, भागते 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 घर आए। शाम को रिपोर्ट दिया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को। ठाकुर हरदास जी बोले, महाप्रभु जी इनके साथ में प्रचार करना बहुत डेंजरस है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं और क्या करेंगे, इनको भरोसा नहीं है, कभी क्या करेंगे कोई गारंटी नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस टू गो विद हिम। लेकिन इन्हें मन में निश्चय करके रखा है कि कल तो इनको भक्त बना के छोड़ूंगा मैं। तो अगले दिन भी वहीं गए, उसी मार्केट में जहाँ पर ये दंगा मस्ती करते आ रहे थे। हरदास जी कह रहे, नित्यानंद निताई निताई, नहीं जाना है हमको यहाँ पर, नहीं जाना है, कहीं और जाते हैं, नहीं जाना है, नहीं, देखो क्या आतंक मच रहा है यहाँ पर। तो फिर भी जाते हैं और सीधे उनके सामने आकर बोलते हैं, भगवान का नाम लो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। उस समय निताई को बहुत गुस्सा, मधाई को बहुत गुस्सा आता है। उसके हाथ में एक बड़ा मटका होता है शराब का, वो पूरा पूरे जोर से जान से मारने के उद्देश्य से उसके सर पे प्रहार करते हैं, और निताई जो है उनके सर से खून बहने लगता है, पूरा मुंह खून से लथपथ होता है, और वो खून बहने से बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। फिर से उठते हैं, बोलते हैं, लो और बार लो, 50 बार मारो, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम लो। कितनी करुणा, कितना प्रेम, कितनी जीव दया। तो मधाई जो है दूसरी बार मारने को हाथ उठाता तो जगाई उसको रोकता है, अरे मत 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 मारो उसको, कितनी प्रेम से विनती कर रहा है वो। उतने में ठाकुर हरिदास के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु को खबर पहुंचती है कि किसी ने निताई को मटके से मारा। उसी क्षण वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, क्रोध से लाल लाल, आंखों में कोयले के अंगार जैसे, आंखें उनकी मानो आग बरस रही हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया, बोला चक्र चक्र, तुरंत उनके हाथों हाथ उंगली पर हजारों सूर्यों के प्रकाश वाला भयंकर चक्र जो है वो प्रकट हो गया। और वो अभी एक क्षण में चक्र को आदेश देकर वो जगाई मधाई का सर काटने वाले थे। उतने में जो बेहोश ग्लानी में थे ना, बेहोश जैसे ग्लानी में थे, वो उठे वहां से, जैसे कि आप समझो खून में लथपथ होके गिर गए, उसे बेहोश होके, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, और देख रहे हैं कि अभी महाप्रभु चक्र का प्रहार करके दोनों का सर काटने वाले हैं, तो उसमें से भी उठकर वो महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और पकड़ते दोनों चरण, महाप्रभु कृपा करो कृपा करो, चक्र मत चलाओ, क्योंकि अगर चक्र चलाओगे तो कलयुग में ये सब जगाई मदाई जैसे ही मिनी स्वरूप है, सब लोग, सबको सर काटना होगा, सबका चक्र चलाना होगा सबके लिए। तो जिस मिशन के लिए आप आए हो उसका क्या होगा? आपका मिशन किसी का वध करने के लिए नहीं है, आपका ये अवतार सबका उद्धार करने के लिए है, करुणा अवतार है आपका, अवतार ही अवतार है, तो आप इन पर चक्र मत चलाइए। तो ये देखकर दोनों हैरान हो गए, पहले तो उन्होंने भगवान का आवेश देखा कि अभी मृत्यु सामने खड़ी है, तो पूरा उनका नशा उतर गया था उसी समय समझ गए कि ये बहुत दिव्य मामला है, ये व्यक्ति भी दिव्य है और महाप्रभु भी दिव्य है। तो दोनों महाप्रभु के चरणों में गिर गए, वो कह रहे माफी मांग रहे, माफी मांग रहे, माफ करो माफ करो, त्राही माम त्राही माम। तो महाप्रभु ने जगाई को गले लगाया, पहले तो उनसे बात किया, उन्होंने तो माफी मांगी कि हमको माफ करो, उन्होंने कहा एक ही कारण से आपको माफ कर सकते हैं, वो ये है कि इसके बाद में आप कभी कोई पाप नहीं करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, चैंट हरे कृष्णा एंड डू नॉट कमिट एनी सिंफुल एक्टिविटीज़, बस इतना आदेश दिया उनको, तुरंत मान गए वो। तो जगाई को उन्होंने गले लगाया, जगाई को गले लगाते ही जगाई प्रेम से पागल हो गया एकदम। आज एक क्षण के पहले बहुत बड़ा पापी भयंकर गुनहगार था वो, शराबी नशा करने वाला जुआरी सब कुछ था, एक क्षण में कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, अश्रु बहाने लगा आंखों से और नाचने लगा पागल होकर। तो मझाई ने देखा कि उसने तो अपने अपने कृष्ण प्रेम दे दिया, मुझे भी दे दो, नहीं तुमने निताई को मटके से मारा था। फिर निताई ने उसके लिए विनती की, नहीं महाराज नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज़ गिव हिम ऑल्सो मर्सी। तो उसको भी वार्निंग दिया, कोई पाप नहीं होगा इसके आगे, तो उसको भी गले लगाया। दोनों को गले लगाने के बाद में गौरांग महाप्रभु जो हजारों सूर्यों के समान गौर वर्ण के स्वर्ण कांति वाले थे, वो काले हो गए पूरे, सारा जो पाप था जगाई मधाई का उन्होंने स्वीकार कर लिया अपने ऊपर। यमराज को विश्वास नहीं हुआ कि जिसके पापों का, जिनके पापों का रिकॉर्ड रखने में मेरा पूरा यमलोक का स्टाफ जो था वो ओवरवर्क्ड स्ट्रेस्ड आउट था, कंप्लीटली फुल्ली स्ट्रेस्ड आउट, और जमीन में गड्ढे बना बना कर उनका रिकॉर्ड लोग स्टोर कर रहे थे, सब स्टोर फुल हो गया। अभी प्रॉब्लम केवल स्टोर करने का नहीं था, उनको दंड देना भी है उसके बाद में ना, इतना रिकॉर्ड अभी सब जमा करना है, उसमें हर एक रिकॉर्ड के मुताबिक उनको दंड भी देना है, कितना बड़ा काम है। और दुनिया में केवल दो लोग नहीं है, बहुत बाकी लोग भी है, उनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो यमराज को जब भी खबर मिली यमलोक में कि जगाई मधाई का उद्धार हो गया है, कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं वो, तो उसको विदय भी नहीं हुआ, यकीन ही नहीं हुआ। सब देवता लोग भी चर्चा कर रहे हैं, अरे सुना आपने, सुना आपने, सब देवता इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए ब्रह्मलोक इंद्रलोक देवलोक स्वर्गलोक यम लोग से जा रहे हैं, अपने अपने वाहन से देवी और देवताएं सब जा रहे हैं पृथ्वी की ओर टू विटनेस कि क्या है, सच है कि जगाई मधाई का भी उद्धार हो सकता है। तो बीच में यमराज निकले भैंसे पर और इतना जोर से भगा रहे भैंसे को, उसको चक्कर आया बीच में, बेहोश हो गया बेचारा वो, तो क्या करे अभी, टायर पंक्चर। तो वहां से ब्रह्मा जी आ रहे थे स्वान में बैठकर, हंस में बैठकर, तो ब्रह्मा जी ने कहा कम ऑन आई विल गिव लिफ्ट टू यू। तो ब्रह्मा जी ने उनको लिफ्ट दिया और ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रश्न पूछा क्या ये सच है। ब्रह्मा ने पूरी कहानी सुनाई, ये कहानी सुनकर यमराज बेहोश हो गए, सुनकर उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है, और बेहोश अवस्था में पृथ्वी तक पहुंचे। तो ब्रह्मा ने जगाया, अरे यमराज जी उठो, अभी देखो सामने का सीन देखो। तो क्या सामने सीन देख रहे हैं, वैसे आकाश में बीच में थोड़े खड़े हैं थोड़े ऊपर, हाँ ब्रह्मा जी के हंस पर यमराज और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और नीचे का देख रहे हैं जगाई मधाई प्रेम से मग्न होकर नाच रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे उच्चारण करते हुए सब भक्तों के संग नाच रहे हैं। नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं, हरिदास ठाकुर नाच रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, और ये दोनों, सबको विश्वास नहीं हो रहा है क्या वही है ये दोनों जो कुछ क्षण पहले खून खराबा खून और दंगा मस्ती और अपराध और गुनाह कर रहे थे। फिर महाप्रभु चैतन्य ने कहा कीर्तन चालू रखो, फिर देखो क्या होता है। जैसे कीर्तन आरंभ हो गया, धीरे 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 काला रंग उतरता गया और कुछ समय बाद सारा काला रंग नष्ट हो गया और फिर दोबारा स्वर्ण कांति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, जगाई मधाई ने जितने अनंत अनगिनत पाप किए थे वो सारे अभी हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से अवकाश में एकत्र हो गए हैं, मुझसे निकलकर अवकाश में गए हैं। आज के आगे जो भी मेरे वैष्णव भक्त का अपराध करेगा उनमें वो पाप प्रवेश करेंगे, इसलिए सावधान रहिए। वैष्णव अपराध करना बहुत भयंकर चीज़ है, क्योंकि जगाई मधाई के पाप अभी भी अवकाश में हैं। उनको अगर वहीं रखना है तो हरिनाम कीर्तन करना पड़ेगा, तो वहीं रहेंगे, वो आपके तरफ नहीं आएंगे। हरिनाम छोड़ देंगे, जब हरिनाम छोड़ते ना तभी अपराध होता है, जब कृष्ण भावना होती है तो अपराध नहीं होता है। जब कृष्ण भावना से हट जाते हैं तो कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट या धोरे, झपट के माया पकड़ती है फिर अपराध होते हैं। इसलिए वैष्णव अपराध से डरना चाहिए हमको। वो भयंकर पाप जो यमराज को उसका दंड देना भी एक प्रॉब्लम था, वो पाप आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं अगर आपने वैष्णव अपराध किया तो। ऐसे ही ये मैंने ये सब क्यों बताया, कैसा अद्भुत चमत्कार किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं किया है। एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। प्रहलाद के अवतार थे वासुदेव दत्त, वो मामगाछी में रहते हैं मुदद्रुम द्वीप, तो महाप्रभु चैतन्य उनको मिलने गए तो रो रहे हैं, वासुदेव रो रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु जी मेरी एक ही इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि ये दुनिया के लोगों का जो कष्ट और पीड़ा जो है यहाँ पर रहते हुए मुझे सहन नहीं हो रहा है देख के, मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे ऐसा करो, ये सब दुनिया में जितने भी जीव हैं आज के तारीख में वो सबके जितने भी पाप हैं मुझ पर डाल दो और मैं वो भोगने के लिए अनंत काल तक नरक में जाऊंगा और भोगते रहूंगा, लेकिन सबको आप गौलोक धाम लेके जाऊं। ऐसा कोई सोच भी सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। हाउ कैन वन थिंक लाइक दैट। आप बोलेंगे मेरे पीछे बेटे का जो तकलीफ है वो मुझे दे दो, मैं सहन करूंगा, मुझे मेरे बेटे का दुख सहन नहीं होता है, मेरी उम्र उसको लग जाए, उसका रोग मुझे लग जाए, ऐसी माँ कह सकती है अपने बेटे के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति पूरे दुनिया के मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए, पंछियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए बोल सकते हैं क्या? लेकिन वासुदेव कोई डायलॉग नहीं मार रहे थे पिक्चर का, इसने लिख के दिया था और वो बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, हृदय से बोल रहे थे। महाप्रभु रोने लगे उसको सुनकर, बोले वासुदेव तुम्हारी केवल इच्छा से, मैं भी वादा करता हूँ तुम्हारी, तुमने केवल इच्छा करने की वजह से मैं इस समय पर इस विश्व में जितने भी जीव अलग अलग शरीरों में बद्ध हैं उन सबको मैं इस जीवन के अंत में रिहा करके गौलोक लेके जाऊंगा, और आपको उनके लिए नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी उनके साथ मेरे साथ गौलोक जाएंगे, जस्ट बाय योर डिज़ायर मैं सबको मुक्त कर देता हूँ। ऐसा भगवान ने किसी अवतार में नहीं किया था। बोले वासुदेव तुम जैसा बहुत बहुत भक्त बहुत विरला है, जो स्वयं को अनंत काल तक दुखों में डालकर बाकी सब लोगों को कृष्ण प्रेम और गौलोक धाम वास देना चाहता है, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं इधर, वही प्रहलाद जी हैं, जब वासुदेव के रूप में आते हैं तो देखो उनकी करुणा कितनी तेज है, ऐसे अनंत भक्त हुए हैं। श्रीवास ठाकुर अपने पुत्र का देहांत हो गया फिर भी बोल रहे डोंट डिस्टर्ब, ऐसे अद्भुत भक्त और ऐसे अद्भुत भगवान। चांद काजी जैसे भक्त लोग भी भक्त बन गए, सरेंडर हो गए। वो नवाब हुसैन शाह जरासंध के अवतार थे, वो भी गौरांग महाप्रभु को देख के उनके हृदय में अनुभूति हुई कि नहीं ये भगवान ही हो सकते हैं, ही इज अल्लाह, आप मुझे मत बताना, क्योंकि वो छुपाना चाहते थे रूपा सनातन गोस्वामी, जस्ट ट्राइंग टू जस्ट नो कन्फ्यूज हिम, बोलते आप कुछ भी बात करो, मैंने समझ लिया है कि तुम्हारे गौरांग महाप्रभु अल्लाह है, भगवान है स्वयं। ऐसे अद्भुत लीला हैं चैतन्य चरितामृत में लिखी गई है और वो ये धाम है। तो इस क्षेत्र में एक और लीला हुई है, वो ये है कि बाणासुर के युद्ध के समय, बाणासुर ने बड़ी तपस्या की थी, शिव जी की तपस्या की थी और 1000 हाथ प्राप्त करके लिए थे, उस 1000 हाथ को हाथों के माध्यम से 500 मृदंग पकड़ के उसने तांडव नृत्य में शिवजी की सहायता की थी, मतलब असिस्टेंस, म्यूजिकल असिस्टेंस दिया था, तो बड़ी कृपा उसको शिव जी की प्राप्त थी, वरदान मिला था कि जब भी मैं संकट में आऊँगा आप मेरे पक्ष में युद्ध करोगे। और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में आकर आप बसे। तो कैलाश छोड़कर शिव जी इसके राज्य में आकर बसे थे, वो नेपाल के आसपास राज्य है उसका, बाणासुर का, वहां पर आके बसे उनके किनारे पे। तो जब बाणासुर का और कृष्ण का युद्ध हुआ, बड़ी लंबी कहानी है भागवत में, अभी भी हमारे मंदिर में समाप्त हुई कथा, वो बहुत लंबी कहानी है। उसमें क्या हुआ, जैसे बाणासुर ने भगवान से युद्ध किया, वैसे ही बाणासुर के पक्ष में शिवजी आए युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण के बालक सब, सात्यकी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बलराम जी युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर शिवजी, उनके गण, उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश जी सब यहाँ से युद्ध कर रहे हैं, बाणासुर भी युद्ध कर रहे हैं, उसके पुत्र भी युद्ध कर रहे हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर कि दुनिया के जाने माने किरदार उसके अंदर युद्ध में सम्मिलित थे। बहुत लोगों का युद्ध हुआ, मतलब सात्यकी अगेंस्ट बाणासुर, बाणासुर अगेंस्ट ये प्रद्युम्न, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन का युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान बलराम जी, आखिर में कृष्ण बाणासुर ऐसा युद्ध हुआ। फिर कृष्ण और शिवजी का युद्ध हुआ, उसके पहले चक्र ने क्या किया, जाकर शिवजी की वाशी का काशी को पूरा जला दिया, मतलब शिवजी को क्या किया, ग्रह विहीन कर दिया, घर से बेघर कर दिया, काशी को पूरा भस्म कर दिया उन्होंने पूरा। वो युद्ध कर रहे थे यहां पर और काशी गए और चक्र ने पूरा काशी को भस्म कर दिया और युद्ध हुआ और उसमें शिवजी को परास्त कर दिया। शिवज्वर विष्णुज्वर का युद्ध हुआ, उसमें भी शिवज्वर नष्ट हो गया। और फिर भगवान ने शिवजी के सामने, पहले शिवजी को शिथिल कर दिया, उनके सामने बाणासुर के 996 हाथ काट दिए। फिर शिवजी भगवान के चरणों में गिरे और अपने भक्त के लिए माफी मांगी उन्होंने कि प्लीज भगवान, ये मेरे भक्त हैं, आप इनको क्षमा कर देना। अभी इसका अहंकार जो था ना, 1000 हाथों के वजह से, जिसके वजह से वो पहाड़ को तोड़ता था, पहाड़ की पाउडर बनाता था, वृक्षों को उखाड़ता था, सबसे युद्ध करता था, अभी उसका अहंकार नष्ट हो गया, क्योंकि अभी 4 ही भुजा बाकी है उसकी, तो उसको छोड़ देना। तो शिव जी के विनती से उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब युद्ध समाप्त हो गया, शिव जी को मतलब सब समाप्त हो गया, माफी माफी सब हो गई। तो शिव जी को कभी घर नहीं रहने के लिए, शिव जी यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, हरिहर क्षेत्र कहते हैं उसको, हरिहर क्षेत्र, यहाँ पर आके शिव जी चिरंतन निवास कर रहे हैं। वैसे उनको भगवान ने निवास दिया, उधर भी दिया, कहाँ पर, एकाम्रवन यानी कि भुवनेश्वर, वहाँ पर भी अपने शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में भी उनको निवास दिया। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने चिरंतन निवास किया और कहते हैं कि यहाँ पर वो चिरंतन गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करते हुए प्रेम में विवल होकर नाचते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली इज डांसिंग इन एक्सटेसी ऑफ लव इसी क्षेत्र में, और इसलिए इस क्षेत्र को नवद्वीप धाम का महावाराणसी माना गया है। दिस इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम काशी, ये महावाराणसी। और यहाँ पर एक विशेष वरदान है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति वट एवर नेचुरल वे शरीर छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके कान में जाकर शिवजी महाराज बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शिव जी का वादा है। वो सब अपने अनुयायियों को, गणों को, भूतों को, प्रेतों को, सबको बताते हैं, गौरांग का नाम पुकारो। आप लोग पुकारेंगे, गौरांग 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 नित्यानंद नित्यानंद। आपने शिव जी की इच्छा पूरी कर ली। सब भक्तों को वो पुकारते हैं कि आप गौरांग महाप्रभु नाम ले लो, सब जीवन के दुख नष्ट हो जाएंगे, सब जीवन की पीड़ा कष्ट बंधन मुक्त हो जाएंगे आप सब लोग। न केवल मुक्त हो जाएंगे, तत्क्षण आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। पुराने जमाने में, पुराने युगों में गौरांग महाप्रभु के होने के पहले क्या था, पहले पापों की नष्ट करने के लिए यज्ञ करो, कर्मकांड करो, दान धर्म करो, तीर्थ यात्रा करो, नदी में स्नान करो, फलाना करो, ये सब करो, फिर धीरे धीरे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी सब नष्ट नहीं होंगे, थोड़े बचेंगे, फिर ये करो, फिर ये विधान करो, ये कर्मकांड करो, फिर भगवान का नाम लो, फिर धीरे धीरे भगवान का भक्ति वगैरह धीरे धीरे होगा, निष्ठा आएगी धीरे धीरे। लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि एक ही क्षण में पाप निवृत्ति, उसी क्षण में कृष्ण प्रेम प्राप्ति, एक क्षण में अति भयंकर पापी थे वो दोनों, एक क्षण के अंदर पाप निवृत्ति हो गई और कृष्ण प्रेम जो चरम सीमा है, हाँ, अथो श्रद्धा तथो साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा तथा रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इतने स्तर है और धीरे धीरे प्रगति करनी होती है। ये कैसे? यहां पर पाप निवृत्ति और वहां पर सीधा प्रेम, अंतिम चरम जो है एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। ऐसी कृपा भगवान के आज तक किसी अवतार में नहीं की है। यहां तक कहा गया है, मैंने सुना है हिज होलीनेस समाल कृष्ण महाराज के प्रवचन में कि नरसिंह भगवान, वामन देव, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, इनके द्वारा भी उद्धार होने पर ये गारंटी नहीं कि आप वो लोग धाम जाएंगे। केवल राम भगवान, कृष्ण भगवान कृपा करेंगे, उसके बाद गौरांग महाप्रभु कृपा करेंगे, तो ही उनके द्वारा वध होगा या उनके द्वारा कृपा प्राप्त हो जाएंगे, तो ही गोलोक धाम की प्राप्ति उसी जन्म में हो सकती है, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। वो कोई विरला भक्त हैं प्रहलाद जैसे, जिनको उसी समय मुक्ति मिली, लेकिन सब लोगों को उनके द्वारा कृपा होने पर भगवान का धाम प्राप्त होता है ऐसी गारंटी नहीं है। और प्रभु भी कैसे, कृष्ण कैसे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं भज, सब पहले पापों को छोड़ो फिर मैं पहले आपको पापों से मुक्त करूंगा, डरना नहीं, ऐसा नहीं बताया मैं कृष्ण प्रेम दूंगा, मेरा प्रेम दूंगा, मेरी भक्ति दूंगा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये बताया है कि जरूर पापों से मुक्ति दिला दूंगा लेकिन भक्ति दूंगा, प्रेम दूंगा, ऐसा गारंटी नहीं दिया है। लेकिन महाप्रभु जो है ना उसके भी आगे हैं, तत्क्षण जो भी व्यक्ति उनके लिए अपने आप को शरणागत कर लेता है उसी क्षण उसको भक्ति दे देते हैं, उसी जीवन में हमको इस दुनिया के बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में ले जाते हैं। तो इसलिए यहां पर आना का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप अभी अभी इतना भक्ति में रुचि नहीं है प्रभु जी, अभी क्या करेंगे, दो चार जन्म में जाएंगे, अभी क्या है पंचवार्षिक योजना बनाएंगे, पंच जीवनीय योजना एक दो चार पांच जीवन लेंगे लाइन से, फिर हो जाएगा काम पूरा, एक जन्म में होने वाला काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। यहां पर आने के बाद आपको विचार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके बल पे नहीं, महाप्रभु की कृपा के बल पर आप ये सोच सकते हो, इच्छा कर सकते हो, विचार कर सकते हो कि इसी जन्म के अंत में भगवत प्राप्ति होगी, हमारे बलबूते पे नहीं, गौरांग महाप्रभु की शरणागति लेने के बलबूते पर हम ये विचार कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, और वो इच्छा पूर्ण भी होगी, ऐसा धाम है ये। हाँ, कितना भी बड़ा पापी होगा, पापी पापी थापी आता छिलो हरिदामा उद्धारी लो तारा साक्षी जगाई मधाई, इतने बड़े पापी होंगे तो भी उनका पाप एक क्षण में नष्ट हो सकता है, अगर हम हरिनाम के माध्यम से गौरांग महाप्रभु का शरण ग्रहण करेंगे, पापी थापी आता चिलो हरिनाम उद्धारी लो, ये महिमा है इनकी, ऐसी महिमा कृपा और कहीं नहीं है। इसलिए और आगे जन्म लेने का प्लानिंग मत करो, बहुत साल वैसे ही बीत चुके हैं, हाँ जन्म तेरा बातों में बीत गयो, बहुत सारा जन्म समय व्यर्थ हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये जो मौका है इसमें एक और अद्भुत बात ऐसी है कि अभी आपने, मैंने आपको एक कल्प का गणित सुनाया ना, एक कल्प कितने का होता है, एक कल्प कितने का होता है, 43,20,000 ईयर्स इंटू 1,000 टाइम्स, हाँ तो एक कल्प में 1,000 दिव्य युग होते हैं, वाई मल्टीप्लाई बाई 1,000, क्योंकि 1,000 बार चार चार युग जब आते हैं ना तो एक कल्प होता है, तो एक कल्प में 1,000 बार साइकिल होती है चार चार युगों की, उसके 999 साइकिल के बाद में जब 1,000वां साइकिल शुरू होता है, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, तो उस 1,000वें द्वापर में एक बार कृष्ण अवतार लेते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, हर कल्प में नहीं लेते हैं, हर दिव्य युग में नहीं लेते हैं, हर द्वापर में नहीं आते कृष्ण भगवान, एक बार आते हैं, और उस कृष्ण के द्वापर में आने वाले द्वापर के बाद में जो कलयुग आता है उसमें गौरांग महाप्रभु आते हैं। और आप लोग इस दुनिया में तब जन्म ले चुके हो जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, आपका जन्म उस कलयुग में हुआ है जिसके पहले वाले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान भी आए हैं, बस दिव्य समय के अनुसार बहुत अनंत करोड़ों सालों के बीच में देखा जाए तो कैसे होता है, केवल 5,000 साल पहले, एक्चुअली वो करोड़ों सालों की गिनती में 5,000 साल, 500 साल तो कुछ भी नहीं होते हैं, ऐसे बाय द वे जस्ट रिसेंटली गौरांग महाप्रभु हैड अपीयर्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमारा भाग्य क्या है, हम वो 251वें कलयुग में जन्मे हुए नहीं हैं, हम लोग 1,000वें कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य जीवन हैं। जिनके जन्म के केवल 524 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए हैं। अभी भी इनकी चरणों के रज यहाँ पर है उपलब्ध, इन्होंने यहीं पर कीर्तन किया है, इनके चरण के स्पर्श यहाँ पर हुआ है और ये भूमि भी पुनित हो गई है उनके चरण स्पर्श से। अभी भी फ्रेश है, गीला है अभी भी, और हमारा जन्म उस कलयुग में हुआ है। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, ये कलयुग समाप्त होगा ना तो अभी 1000 दिव्य युग होंगे, उसके बाद वाले 1000वें कलयुग में फिर दोबारा चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तब तक आपको यहाँ पर रहना है क्या? नहीं ना, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि इसी कलयुग में आए हो। केवल आपको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको लगता होगा कितना आसान है, अभी तो कुछ चमत्कार दिखाई नहीं पड़ा, कब चमत्कार होगा? चमत्कार आपके आत्मा पे हो रहा है, आपको समझ में देर लगेगी उसको। जो चमत्कार, जो ऑपरेशन आपके हृदय पे हो रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या हो रहा है। आपको केवल एक काम करना है, मुंबई जाने के बाद, अपने शहर में जाने के बाद में फिर माया में फंसना नहीं है बस। हाँ, और जो महामंत्र का विधि है उसको हृदय से अपनाना है, उसको जो नियम है उसको पालन करना है, और एक गंभीर सीरियस भक्त बनना है भगवान का। इतना आप करेंगे तो इस यात्रा में जो चमत्कार आपके हृदय पे हो गया है उसका साक्षात्कार आपको होने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि तो हमारी बुद्धि इतनी क्या कहते हैं डल हो गई ना, कि हम लोग क्या हमारे अंदर आध्यात्मिक साक्षात्कार हो रहा है उसको भी समझ नहीं पाएंगे हम, ऐसी इतनी हमारी बुद्धि जो है ना कमजोर हो गई अभी। धीरे धीरे भगवान के नाम का जप करेंगे तो ये सारी बुद्धि भी जो है वो दिव्य हो जाएगी, और उस दिव्य बुद्धि के आधार से हम समझ सकेंगे कि हमारे अंदर क्या हो रहा है अभी, क्या मिला है हमको, क्या प्राप्ति कर चुके हैं हम। कोई लोग लोन लेके आए हैं, कोई लोग कर्जा लेकर आए हैं यात्रा के लिए हो सकता है, कोई लोग अपने पैसे से आए, कोई लोग एसी में रह रहे, कोई लोग हवाई जहाज से जा रहे हैं, लेकिन सबके हृदय पर वही सेम कृपा सबको मिल रही है। ध्यान में रखना इस बात का, खाली उसको लाइटली मत लेना, जाकर पूरे जाकर वापस शहर में माया में जीवन मत जीना जाके, नहीं तो फिर भगवान कृपा करके भी क्या फायदा है। जैसे इंद्र को महाविष्णु की महाप्रसादी माला मिली, उसने क्या किया, हाथी के पैर में दिया, तो वैसे भी हमारा हो जाएगा, तो और हमारा उद्धार कौन कर सकता है, हु कैन सेव अस। इतने बड़े महावदन न्याय दयालु अवतार अगर आकर हम पर कृपा कर रहे हैं और तब भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो और क्या हमको सुधार सकता है। इतना, इससे बड़ा और डिस्काउंट और कंसेशन कोई नहीं देगा हमको, इतनी कृपा और कोई नहीं करेगा हम पर। इसलिए अभी राइट नाउ इज द टाइम टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।